Om Shanti. Good morning. और आज के दिन की विशेष मुबारक पांडव भवन के झंडे जहां साकार बाबा खुद झंडे लहराते थे उस दिन वो आज दिन आया आज और बाबा की मुरली बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है। बाबा पूछते हैं कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, तो सभी को उत्तर तो आता ही है, दोस्त है खुदा और दुश्मन है रावण। तो आज बाबा ने राम राज रावण राज का कई बातों का कॉन्ट्रास्ट बताया है, परंतु उसमें भी कहानी है सारी राइज एंड फॉल भारत की, उत्थान और पतन की कहानी भारत की। परंतु जिस समय भारत का उत्थान होता तो विश्व का भी हो जाता, तो भारत का विशेष स्थान है हर बात में। सबसे ऊंचते ऊंच भारत क्यों? क्योंकि इसी देश में भगवान खुद अवतरित होते हैं। और फिर बाबा ने पवित्रता के लिए भी बहुत सुंदर बात कही है, जो बच्चे बाबा के बनकर श्रीमत पर चलते पवित्र बनते और अन्य आत्माओं को भी पवित्र बनने की प्रेरणा देते, उन्हों को बाबा भी बहुत प्यार करता, परंतु सारे परिवार की उन्हें आशीर्वाद भी मिलती। तो बाबा की ये है 10 तारीख की मुरली, मीठे बच्चे खुदा तुम्हारा दोस्त है रावण दुश्मन है, इसीलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? उत्तर, जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत ऊंच पद पा लेते। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देती है, जबकि पवित्रता की टॉपिक है तो कौन सी श्रेष्ठ मत है बाबा की? बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। और गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं, आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है, ब्रेन है परंतु बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा, शरीर तो मेरा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है, आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता। सारा पहले आत्मा और शरीर का कॉन्ट्रास्ट बाबा बता के, फिर वैसे ही आत्मा जो बाप है जिसको गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आता, उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई है, ये भाई बहन है। आत्माएं तो सब भाई भाई है। आत्माओं का बाप है परमपिता परम आत्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है, इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। कौन समझता है कि दुनिया अभी इतनी पुरानी हो गई है, जो कोई उसकी हालत तो बहुत बिगड़ गई है, कोई उसको बचा नहीं सकता। कौन समझता है दुनिया की हालत ऐसी है? हम सब समझते हैं, इस कारण से नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोग देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना, वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। न सिर्फ बदलनी है, बिल्कुल खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर उसके बाद सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। ये शब्द कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती, परंतु उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, किस तरह से रिपीट होती, सिर्फ ब्राह्मण बाबा के बच्चे जानते हैं। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। इनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी, राम सीता की डिनेस्टी। ये तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं, फिर देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते। उनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष चलाते आते, परंतु जलता ही नहीं, फिर चलाते हैं। ये है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर वन दुश्मन कौन है, और फिर नंबर वन दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वो है दुश्मन। इसीलिए 10 शीश वाला रावण बनाए, उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। आत्मा और शरीर का कॉन्ट्रास्ट, आत्मा और परमात्मा का कॉन्ट्रास्ट, और फिर पुरानी दुनिया नई दुनिया का कॉन्ट्रास्ट। बाबा सब कॉन्ट्रास्ट की बातें बता रहे हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको रामराज चाहिए, रामराज में सुख, रावण राज में दुख। अब ये कौन बैच समझाते हैं? पतित पावन बाप, शिव बाबा, ब्रह्मा है दादा, बाबा हमेशा सही भी करते हैं, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है, उनको ब्रह्मा बाबा एडम है, ब्रह्मा बाबा वह प्रजापिता है, और साथ साथ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर ब्राह्मण सुदेवता बनते हैं, देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते। ये है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, ये है ही पतित दुनिया, रावण राज। अब रावण की आसरी दुनिया खत्म हो जाएंगी। दुनिया नहीं खत्म होंगी, दुनिया तो रहेंगी, परंतु आसरी दुनिया मतलब कि जो भी असुर लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं, रावण नहीं, रावण का क्या काम। रावण को कहते हैं रुलाने वाला, तो रावण का काम ही है दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं उनके पास, जिनके पास पैसे बहुत है, बड़े बड़े महल है, वो स्वर्ग में है। ये तो देख ही रहे हैं संसार की हालत, पैसा जमा कितना भी बैंक में हो, बीमारी आ गई तो उस समय पैसा भी कोई काम का नहीं। जिस घड़ी संबंध टूटा उसमें भी पैसा कुछ काम नहीं करता। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि उनके लिए ये स्वर्ग है। बाप समझाते हैं भल किसके पास करोड़ है, परंतु ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। और मिट्टी में मिल जाने से पहले जो भी बैंक में जमा है वो आपको निकालने ही नहीं देंगे। यही हालत होने वाली है संसार की। और न सिर्फ हम लोग कहते हैं, बाहर वाले भी आजकल इसी पर चर्चा कर रहे हैं। नई दुनिया में फिर नई खाड़ियां निकलती है, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही है सतगति के लिए, हमको पावन बनाओ। हम विश्वस बन गए हैं, विश्वस को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते, विकार वहां होती ही नहीं। न देह अभिमान, न काम क्रोध आद आद, पांच विकार होते ही नहीं। इसलिए वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहां तो रावण राज्य है। अब बाबा कहते तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वे ही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था न, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सत्युगी राम राज स्थापन होना है। सत्युग में बाबा सुपात का कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, सत्युग और कलयुग का। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सत्युग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है तो राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। परंतु बहुत कॉन्ट्रास्ट, आज तो दिल्ली में पोल्यूशन इतनी 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 जबरदस्त जो सब बीमार हो जाते। तो बाबा कहते वहां राम राज में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर तुमको देता हूं, तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद न करो। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम मेरे पास चले आएंगे। मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर मैं हूं, फिर दो है ब्रह्मा सरस्वती। वही सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबर वार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूं। स्वर्ग बनाने में शिव बाबा पहले तो रहते हैं ब्रह्मा और सरस्वती का संयोग और फिर सभी ब्राह्मण जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। ये है रुद्र माला और वो है विष्णु की माला। रुद्र माला है आत्माओं की, विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं को आत्माओं के रहने का स्थान वो निराकारी परम धाम है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं यहां स्वीट होम में रहने वाले हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं, वो है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक भी नहीं जा सकता। जब तक नीचे आने का ड्रामा है तब तक तो वापस जाने का संभव नहीं। नीचे आने का पूरा हुआ फिर सब चलेंगे घर। सबको पार्ट में आना ही है, तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। जो ऊपर बाकी भी बची सची आत्माएं हैं उनको भी आना है जरूर। बाप के साथ हम आत्माएं रहती है वो है मुक्ति धाम। मनुष्य सब जाते हैं मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकती। सबको पार्ट में आना ही है, तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगी। फिर खलास। तुम जाकर नई दुनिया में राज करेंगे, फिर नंबरवार चक्कर चलेगा। गीत में सुना ना, आखिर वो दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी है वो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चले जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है, कितना समझाओ किसको, बहुत थोड़ा समझाओ। अलफ अल्लाह बाबा और बे बादशाही, बस ये दो टॉपिक्स पर उनको समझाओ। अलफ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूं। तुम जो राशि जन्म भोग अब पतित बन गए हो। जब बाबा कहते जो राशि जन्म भोग, तो ये भोगना शब्द तो आजकल कलयुग में चल रहा है, बाकी हां सत्युग त्रेता में तो प्रारब्ध फिर भोगना शुरू। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते, भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगी। पहले मैं सोचती थी कि ज्योग्राफी रिपीट होने का मतलब क्या, जहां भारत है भारत तो वहां ही होगा, देश पीछे आने वाले पीछे आएंगे, परंतु अभी मुझे समझ में आता कि जो इतना एनवायरनमेंट दूषित हो चुका है, पानी भी दूषित, हवा भी दूषित, सब कुछ, और उसमें जो अनाज भी मिलता या जो भी खाना पीना का मिलता उसमें भी कुछ न कुछ पॉइजन है ही है। तो इस सारे को ज्योग्राफी को सारा नया बनाना, तो ज्योग्राफी रिपीट होंगी, तो बाबा का भाव है कि प्रकृति भी टोटल रिपीट होंगी, फिर से नई बन जाएंगे। ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगी। ये विनाश है ही इसके लिए, और ब्रह्मा बाबा का कार्य विनाशकारी तो बहुत कुछ देख रहे हैं, परंतु साथ साथ स्थापना का कार्य ब्रह्मा बाबा। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। गलती हम लोगों से ये हो गई, हमने सोचा कि बाबा शरीर छोड़ेंगे, हम भी साथ साथ छोड़ के चले जाएंगे, परंतु भगवान को ब्रह्मा बाबा के द्वारा विश्व की सेवा करानी थी और फिर बहुत कुछ भारत में भी और आगे बढ़ाना था। एक मधुबन ही देखो कितना बड़ा हो गया है, एक कॉम्प्लेक्स न सिर्फ वो बढ़ता गया है, परंतु एक कॉम्प्लेक्स से न सिर्फ तीन कॉम्प्लेक्स, करीब 7 कॉम्प्लेक्सेस हो गई हैं। आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वो समझाती हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहां तकदीर जग जाए। बाबा जब आते हैं सृष्टि पर, बाबा के कई कार्य होते हैं, एक विशेष कार्य अभी बाबा याद दिला रहे हैं, मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने भगवान को आना होता। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। कितना श्रेष्ठ कार्य, कितना सुंदर कार्य, कितना नशा चढ़ता है कि भगवान हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए सृष्टि पर आए। सब पति दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएगा, इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, उसका ही खेल है। राइज ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज करते हैं ये बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत देवताओं का राज, फॉल ऑफ भारत रावण राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, बाप से पर रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं नशा चराने के लिए, ताकि उमंग उत्साह से ठंडी कितनी भी हो परंतु आत्मा उड़ती रहे। बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने, कितना सहज है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, ये भी अच्छी रीत समझते हो। कौन कौन से धर्म कब आते हैं, द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख, ये सारा चक्कर बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अलफ और वे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा, चुबिल को विलायत से आ ही नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। इसका रहस्य हम लोगों ने देखा है कि बिल्कुल ऐसे हंगामा जो विलायत से भी कोई नहीं आ सकता था, परंतु मधुबन में शांतिवन बैठे भी मनमोहिनी वाले भी शांतिवन नहीं आ सकते थे। तो कोविड ने थोड़ी सी रिहर्सल कराई है, परंतु यह सब और कुछ बहुत आगे बढ़ने वाला है। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है, जबरदस्त लड़ाई लगेंगे फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे, 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है जहां बाप आकर अवतार लेते। शिव जयंती भी यहां मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से महिमा सारी ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहां ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। गॉड फादर है, गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करेंगे, तो ऐसे बाप का ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनानी चाहिए। ये बाप, वो बाप यहां भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान ठहरा, सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते, ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है, आत्म अभिमानी बनना है, अपने को बेहद, अपने को आत्मा समझ, बेहद बाप को याद करो तो कट निकलती जाएंगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेंगे, ऊंच पद पा लेंगे। इसीलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, रियलाइजेशन हुआ और आत्मा जीवन बंध से छूट गई। आज मुरली छोटी है तो बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सीके लते बच्चों प्रत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमद पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। सारी मुरली थी संडे की बाप समान, और अभी भी बाबा कहते हैं बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी बात, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है, सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वो है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे विघ्न रूप बने तो हमें क्या करना है, वो आपको गिराने की कोशिश करे, मन को हिलाने की कोशिश करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और शुभ यथार्थ भाव हो तो उनके ऊपर, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में भी नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी की स्टेज। बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि जब हम उनकी गलतियां देखते हैं, उसका मतलब उस गलतियों का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता। तो गलतियां देखो ही नहीं, शुभ भाव रखो, शुभ चिंतक रखो, तो फिर उसके ऊपर आपका वो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहना और फिर सिरे को खिलाना। इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो, भिन्नता को समाओ, हरेक की विशेषता को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बाबा ने बताया है, जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएंगी। तो किसकी भी कमी भी ग्रहण करना, वो ग्रहण है उसे कभी नहीं देखो। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण को कहते हैं देखो ही नहीं, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएंगे। तो रियलिटी ये, हमने किसकी कमी को देखा तो फिर वो ग्रहचारी हमारे ऊपर बैठ जाती है।
शांति। आज बहुत ही विशेष दिवस है। आज इस पांडव भवन के प्रांगण में 90वीं शिव जयंती हम सभी मिलकर के मनाने वाले हैं और पांडव भवन के आंगन में 10:30 बजे सभी को एकत्रित होना है। विशेष सभी मधुबन निवासी, सभी ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार, सभी सेवाधारी, सभी डबल विदेशी भाई बहने विशेष, सभी को निमंत्रण है, सभी को एकत्रित होना है और हम सभी मिलकर के प्यारे शिव बाबा की, सो हम सभी ब्राह्मणों की जन्म जयंती मनाएंगे। तो और आज हम सभी के बीच में विशेष जयंती दीदी बाबा के महावाक्य सुनाने आए हैं और ड्रामानुसार मुरली थोड़ा पहले पूरी हुई है, तो दीदी जी हमारे साथ अवश्य कुछ शिव जयंती की प्रेरणाएं जो उनके मन में है हमारे प्रति वो शेयर करेंगे। और ऑल द डबल फॉरेनर्स प्लीज रिमेन सीटेड, टुडेज प्रोग्राम ऑल्सो विल अनाउंस एंड देर इज सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स ऑल्सो।
मुझे लगता है कि जो ये एकता और विश्वास की बात आजकल अव्यक्त इशारा चल रहा है, समय अनुसार इसकी बहुत 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 आवश्यकता है। और दादी एक बारी हमें कहा था कि यदि आपको यूनिटी चाहिए, एकता चाहिए, तो उसका आधार पहले क्या है? एकांत प्रिय और फिर अंतर्मुखी और फिर एकाग्र चित, फिर एकता आ सकती। तो अपना जो आंतरिक पुरुषार्थ चलता है पहले कि हम अपने स्थिति को एकांत प्रिय बनाए, ताकि उसमें हमें अंतर्मुखता के लिए समय भी मिले और हम अंदर की यात्रा करके अपने आप को परिवर्तन करते रहें और उसमें भी देहभान खत्म होता जाए, तो ही फिर बुद्धि भी हमारी एकाग्र, चित्त भी हमारा एकाग्र। जैसे बाबा ने आज कहा, कोई भी देहधारी की याद बुद्धि को न खींचे। एक बाबा के साथ प्यार, एक बाबा की याद हो रहे, तो उस आधार पर हम सब एक मत हो सकते। क्यों? क्योंकि जितना बाबा और श्रीमत के लिए प्यार होगा, तो उसके सामने हम अपनी मत नहीं चलाएंगे। नहीं तो आप सोचो कितने बाबा के बच्चे हैं, कितनी मत हो सकती। परंतु 90 इयर्स तक पहुंचे हैं और एकता का सबूत दे रहे हैं कि एक ही संस्था। और ब्रह्मा बाबा को भी कितने वर्ष हो गए हैं अव्यक्त हुए। नहीं तो कई बार क्या होता कि जब फाउंडर होता वो तो एक संस्था होती, उसके चले जाने के बाद कहां कहां चार संस्थाएं भी बन जाती, दो छोरो तीन छोरो। आजकल एक प्रसिद्ध संस्था है, उसमें तो चार हिस्से बन गए हैं। तो बाबा का कार्य आज तक बाबा की शिक्षाओं के आधार पर और दादियों की यूनिटी के आधार पर यहां तक पहुंचे हैं, जो सेवाएं भी सारे विश्व में फैल चुकी है। परंतु यदि हम चाहते हैं कि संपन्नता हो सेवा की भी और हमारी खुद की स्थिति को भी, तो पहले अंदर का परिवर्तन, हम श्रीमत को स्वीकार करें, उसमें हम अपनी मत न चलाएं, अपनी बातों को सिद्ध न करें। तो जब हम श्रीमत को पकड़ते हैं तो और जो भी हमारे साथी है वो भी श्रीमत को लेंगे। नहीं तो आपकी मत मेरी मत, आपके संस्कार मेरे संस्कार, उसका तो कभी अंत आने वाला ही नहीं है। परंतु जब हम इन सब बातों को छोड़ के एक श्रीमत क्या कहती है, श्रीमत को लेते हैं, तो फिर हाँ एकता बन सकती। और दूसरी बात भी ये देखी गई है, विश्वास की। परंतु पहले तो खुद में विश्वास हो। आजकल जो बहुत मन में अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, अपना रोल, इन सब के लिए ये थोड़ा मन में भय रहता कि कहानी ये हमसे खिसक न जाए, कोई छीन न लेवे, मेरी ड्यूटी कोई छीन न लेवे। नहीं, यदि उनको ये ड्यूटी करनी है भले करे, मुझे और आगे दरवाजा जरूर खुलेगा और आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। तो हम खुद में विश्वास रखें पहले। और जब खुद में विश्वास है, कोई प्रकार की इनसिक्योरिटी, भय, डर कुछ नहीं है, तो ही फिर हम अन्य आत्मा में भी विश्वास रख सकेंगे। नहीं तो हम कहते कि वो विश्वास पात्र थोड़ी है। नहीं, विश्वास पात्र में मुझे बनना है, मैं औरों के ऊपर उंगली उठा के कहूं वो विश्वास पात्र नहीं है, नहीं मैं विश्वास पात्र बन के दिखाऊं, तो फिर उनको प्रेरणा वो ही मिलेंगी और वो भी अपनी जो कुछ और बातें हैं उसमें परिवर्तन लाकर वो भी विश्वास पात्र बन ही जाएंगे। परंतु विश्वास और अंतर्मुखी स्थिति श्रीमत का आधार तो ही फिर एकता, जो बाबा कहते हैं कि सत्युग का राज तो पीछे हम सब देखेंगे, परंतु अभी ब्राह्मण परिवार में उस एक का राज राम राज अभी से ही वो प्रसिद्ध हो जाए, सबके सामने वो ही एक बात नजर आए, तो आप सोचो स्वर्ग तो जल्दी आ ही जाएगा, नहीं तो स्वर्ग लगता है कि शायद थोड़ा दूर है अभी। बाबा ने ठीक कहा था उस दिन कि जबकि भगत आत्माओं का पुकार और फिर साथ साथ दुखी आत्माओं की पुकार और समय की पुकार, ये तीनों प्रकार के जो पुकार है वो अब तक शायद बच्चों को सुनाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि अपने ही झमेले में अपने ही संस्कारों में व्यस्त हो गए हैं। परंतु इन सब बातों से अपने को मुक्त कर बिल्कुल बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, क्यों? क्योंकि जब लोग बाबा को पहचानेंगे तो वो फिर अपने दुख की जंजीरों को छोड़ सकेंगे। हम नहीं उनको छुड़ा सकते, परंतु वो जब बाबा को देखेंगे पहचानेंगे तो दुख की जंजीरें छूटेंगी और फिर जो वो चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले, गति सदगति हो, वो भी उनको प्राप्त हो सकती। तो जे यो आजकल मुरलियां चल रही है और विशेष उसमें एकता का इशारा उस आधार पर संपन्नता और सफलता, मुझे लगता है कि इन बातों पर जो इशारे मिल रहे हैं वो जबरदस्त इशारे हैं। और आज शिव जयंती का त्योहार पांडव भवन में मनाया जा रहा, बाबा के संग तो फिर हम 14 तारीख को मनाएंगे ही, परंतु अभी भी जो ये मना रहे हैं उसमें हम अपना बिल्कुल दृढ़ संकल्प रखें कि एक श्रीमत और कोई भी बात नहीं। ओम शांति।
आज दीदी जी ने जो विशेष इशारे हम सभी को दिए हैं, अवश्य ही हम सभी उस पर रहते हैं। उसके बाद सभी विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे। Om Shanti, all the double foreigners, brothers and sisters, please remain seated. Today